हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 156। आदित्य के मन में पूरा दिन वही बातें घूमती रहीं और वो वापस घर नहीं आना चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसे शाम को ऑफिस से घर लौटना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत थकान हो रही थी और वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। शिवानी और रवि ने जैसा कहा था, सच में ऑफिस में कोई खास काम नहीं था। वो तो बस दिन भर सुनैना को टालने के लिए ऑफिस आया हुआ था। आदित्य ड्राइवर के साथ घर वापस आया, क्योंकि उसका कार ड्राइव करने का बिल्कुल मूड नहीं था। किंतु कार जैसे ही घर के दरवाजे के पास रुकी, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और आदित्य को अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। आदित्य पिछले 2 सालों से यहाँ रहता था और आज तक जब भी वो यहाँ आया था, उसे हमेशा खामोशी और सन्नाटा ही मिला था। यहाँ तक कि सुनैना के साथ शादी के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला था, क्योंकि सुनैना उसके बिना अकेली ही होती थी घर में, तो वो भला किससे बात करती। और आज घर के अंदर से जो आवाज़ें आ रही थीं, वो सिर्फ बातों की नहीं लग रही थीं। तो आदित्य जल्दी से अंदर आया और देखा कि हॉल में सुनैना अपने एक बड़े से पैक किए हुए बैग के साथ खड़ी थी और स्वीटी गीता दोनों ही उससे बोल रही थीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप घर छोड़कर जा रही हैं? नहीं, आप नहीं जा सकती। कम से कम भैया के आने तक तो रुक ही जाइए। क्या है ये सब और यहाँ हो क्या रहा है? आदित्य घर के अंदर आते ही उन तीनों की आवाज़ और बातें सुनकर बोला। गीता और स्वीटी कुछ न कुछ बोल रही थीं। सुनैना अपने दोनों हाथ बांधकर दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से में चुपचाप खड़ी थी। उसने आदित्य की आवाज़ सुनकर भी उस तरफ मुड़कर नहीं देखा और न ही कुछ बोला। आदित्य के इस तरह अचानक से वहां आकर सवाल करने की वजह से गीता और स्वीटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थीं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य के सवाल का क्या जवाब दें। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ बताएगा कोई? आदित्य के पूछने पर भी उन तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आदित्य अब थोड़ा चिढ़कर दोबारा थोड़ी तेज आवाज में सवाल किया। आदित्य के चिल्लाने पर स्वीटी थोड़ी डर गई और गीता भी घबरा गई, लेकिन सुनैना के चेहरे पर उसी तरह कम भाव थे और वो फिर से कुछ नहीं बोली, आदित्य को नज़रअंदाज करती रही। वो भैया, ये देखिए ना भाभी, ये भाभी नाराज होकर घर छोड़कर जा रही हैं। हम दोनों उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुन रही हैं। स्वीटी बड़ी मुश्किल से सुनैना के बाग की तरफ इशारा करते हुए आदित्य को पूरी बात बताई। आदित्य भी सुनैना की तरफ और उसके पास रखे बड़े से बैग पर एक नज़र डाला, जिसे उसने घर के अंदर आते ही नोटिस कर लिया था। उसे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ है, लेकिन फिर भी आदित्य मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि ये बात ना हो, कोई और बात हो। लेकिन जब स्वीटी ने उसे साफ साफ बता दिया, तो वो घूर कर सुनैना की तरफ ही देखने लगा। हाँ, तो क्यों रुकूं मैं यहाँ? और वैसे तुम्हारे भैया का ही काम आसान कर रही हूँ, वैसे भी उन्हें मुझसे दूर ही भागना है, तो फिर मैं क्यों यहाँ रहूँ? मैं ही दूर चली जाती हूँ, फिर उन्हें इस तरह भागना नहीं पड़ेगा। स्वीटी की बात सुनकर आखिरकार सुनैना भी बरस पड़ी और गुस्से में स्वीटी की तरफ देखकर बोली। आदित्य की तरफ उसने अभी भी नज़र नहीं उठाई थी और ये बात आदित्य को बहुत बुरी लग रही थी कि सुनैना उसकी तरफ देखना तो दूर, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है। सुनैना, क्या तमाशा है ये सब? चलो हम रूम में चलकर बात करते हैं, यहाँ ऐसे सबको क्यों परेशान कर रही हो तुम? आदित्य आगे आकर सुनैना का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचते हुए बोला, लेकिन सुनैना अपनी जगह पर कसकर पैर जमाए हुए खड़ी रही और उसके साथ आगे सीढ़ियों की तरफ नहीं बढ़ी। आदित्य को सुनैना के इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना का हाथ पकड़े हुए ही पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन सुनैना उसके इस तरह देखने से भी उसके पीछे नहीं आई। तो आदित्य बोला, क्या है अब? चलो, मैंने कहा ना, ऊपर रूम में चलकर बात करते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना और कोई बात नहीं करनी। क्या बात करोगे तुम? सुबह तो बिना कुछ बात किए ही चले गए थे। क्या इतना जरूरी काम था? और कभी भी फिक्र करते हो तुम मेरी, बस हमेशा भागते ही रहते हो मुझसे। तो अब मैं ही चली जा रही हूँ, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी? सुनैना बोल ही रही थी कि आदित्य आगे आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। उसके ऐसा करने से सुनैना आगे कुछ नहीं बोल पाती और वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी स्वीटी और गीता दोनों मुस्कुराने लगती हैं और वहां से चली भी जाती हैं, क्योंकि अब वो दोनों समझ गई थी कि आदित्य सुनैना को कहीं भी नहीं जाने देगा। बस करो और चलो चुपचाप, क्या लगा रखा है? दूर चली जाऊंगी, बहुत मज़ा आता है तुम्हें भी मुझे तकलीफ पहुंचाने में। याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और तब ये सब इस तरह? और वैसे कहाँ जाओगी तुम? वापस अपने घर तो जाओगी नहीं? आदित्य उसी तरह सुनैना के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में एक के बाद एक ये सारी चीजें बोलता जा रहा था और साथ ही सुनैना से सवाल भी कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। वो सुनैना के वहाँ से जाने वाली बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सुनैना बार बार वहाँ से जाने के लिए ही बोल रही थी। आदित्य को इस तरह दर्द और तकलीफ में देखकर सुनैना के दिल में भी एक दर्द उठा और वो मन ही मन काफी गिल्टी फील करने लगी। वो आदित्य को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती थी, वो बस उसे समझाना चाहती थी कि उसे भी बुरा लगता है जब आदित्य उससे इस तरह भागता रहता है, और अगर सच में आदित्य को उससे बात नहीं है तो फिर ये सबसे सही है कि वो उससे दूर ही चली जाए। लेकिन अभी उसे आदित्य की नज़रों में साफ नज़र आ रहा था कि आदित्य बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुनैना उससे दूर जाए। सुनैना आदित्य के सवालों के जवाब भी देना चाहती थी और उससे कई सारे सवाल भी करना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने अभी भी उसके चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और उसके आंखों में ही देख रहा था। तभी सुनैना आगे बढ़कर आदित्य के गले लग जाती है, क्योंकि उसे अपने उस वक्त के जज्बातों को बताने के लिए कोई शब्द समझ नहीं आते। आदित्य के गले लगे हुए सुनैना की आंखों से आंसू निकलने लगे, जो आदित्य की शर्ट को हल्का भिगा देते हैं। सुनैना के इस तरह अचानक से अपने गले लग जाने पर आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अभी तो वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि यहाँ से जाने की बात कर रही थी और आदित्य को इग्नोर भी कर रही थी, लेकिन अभी अचानक से उसके गले लग जाने पर आदित्य सोच रहा था कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सुनैना को। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो तब तक उस तरह सुनैना के गले लगा रहा जब तक सुनैना खुद ही उससे दूर नहीं हुई। अच्छा ठीक है, चलो रूम में, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, और उससे पहले वादा करो कि मैं जो भी पूछूंगी तुम मुझे बताओगे और मुझे इग्नोर करने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। आदित्य से थोड़ा दूर हटकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सुनैना अपना हाथ आगे करते हुए इस तरह कहती है जैसे कि उससे वादा करने को कह रही हो। आदित्य सुनैना का हाथ आगे देखकर समझ नहीं पाता कि सुनैना इस तरह हाथ आगे क्यों कर रही है। तो वो सुनैना के हाथ की तरफ और एक बार सुनैना के चेहरे की तरफ देखता है, तो सुनैना उससे कहती है, अपना हाथ रखो और वादा करो जो भी मैंने अभी अभी कहा।
ऊपर रूम में चलो पहले, यहाँ गेट भी खुला हुआ है, ड्राइवर, सर्वेंट, गीतादी और सब तुम्हारी नौटंकी देख रहे हैं। आदित्य उसका हाथ तो नहीं रखता, लेकिन उसकी जगह पर सुनैना की कलाई पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर फिर से सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। तो सुनैना भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसके पीछे चल देती है और उसी तरह मुंह बनाकर बोलती है, नौटंकी? हाँ, नौटंकी लगती है तुम्हें ये सब। मेरे इमोशंस, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता क्या? और मैं कोई नाटक नहीं कर रही। हाँ छोड़ो मेरा, मैं सच में चली जाऊंगी यहाँ से। आदित्य के पीछे चलती हुई सुनैना उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए थोड़े से गुस्से में बोलती है, क्योंकि वो पहले से ही गुस्सा थी और आदित्य की नौटंकी वाली बात सुनकर वो मन ही मन और ज्यादा खिस गई थी। क्या बात, बाद में धमकी दे रही हो मुझे आदित्य सिंघानिया को, पता है तुम्हें नहीं भाग सकती तुम यहाँ से, कहीं भी जा नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूँ। तो वो तो मैं तुमसे इतना प्यार, मेरा मतलब है तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। और इतना बोलकर आदित्य सुनैना को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सुनैना पहले तो थोड़ा सा कसमसाती है, लेकिन फिर आदित्य उसे घूर कर देखता है तो वो भी छूटने की ज्यादा कोशिश नहीं करती और उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और उसे याद आता है कि हाँ सच में आज तक आदित्य ने उस पर किसी भी बात को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं की, नहीं अपने रिश्ते को लेकर और ना उसे कहीं आने जाने से रोका। आदित्य के शब्द सुनैना के दिमाग में घूमने लगते हैं। आदित्य सुनैना को लेकर ऊपर अपने रूम में आता है और सुनैना को बेड पर बैठाते हुए वापस दरवाजे की तरफ आता है और रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। दरवाजा बंद करके सुनैना की तरफ ही बढ़ने लगता है, तो आदित्य को इस तरह से अपनी तरफ आते देख सुनैना के गले का पानी सूख जाता है और वो जल्दी से बेड से उठकर दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है और आदित्य की तरफ देखते हुए अटकते हुए शब्दों में बोलती है, आदित्य तुम वो, मेरा मतलब है हम तो बात करने आए थे ना यहाँ, वो तुम जो नीचे। सुनैना को इस तरह घबराते हुए अटक अटक कर बोलते देख आदित्य उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और आगे आकर उसके हाथ में पकड़कर उसे अपने एकदम करीब कर लेता है और बोलता है, इतना करीब ठीक है ना, नहीं भाग रहा हूँ मैं तुमसे दूर, बोलो अब तो ठीक है ना।